जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि Ola Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha, Shyam Sundar Radha, Shyam Sundar Radha. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री लगदाधर पंडिताविर्भाव दिवस की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जाए, समवेत भक्त वृंद की जाए, श्री श्री गुरु गौरांग की जाए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रील गदाधर पंडित का आविर्भाव दिवस है, तो श्रील गदाधर पंडित के बारे में हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पांच तत्वों का वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पहले अध्याय में श्लोक संख्या 14 है। ये कविराज गोस्वामी का मंगलाचरण है, 14 श्लोक है मंगलाचरण में, उनमें से ये श्लोक एक है। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। 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 पंचतत्वात्मकं कृष्णं स्वरूपकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। मैं उन परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं जो अपने भक्त भक्ति अवतार भक्ति प्राकट्य शुद्ध भक्त तथा भक्तिमय शक्ति के स्वरूप से अभिन्न है। कृपया दोहराइएगा, मैं उन परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं जो अपने भक्त भक्ति अवतार भक्ति प्राकट्य शुद्ध भक्त तथा भक्तिमय शक्ति के स्वरूप से अभिन्न है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरहन परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो श्रील गदाधर पंडित कौन है इसकी चर्चा हम पहले करेंगे। वैसे ज्यादातर तो भारत में दूसरे देशों की बात तो दूर है, यहां पर भी अधिकतर लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जानते हैं। अगर जानते भी हैं तो सोचते हैं कि महाप्रभु भी कोई एक संत मात्र हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। वही श्री कृष्ण जो कि अपने भक्त के रूप में यहाँ अवतीर्ण हुए हैं, इस भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए और सारे पृथ्वी को, सारे ब्रह्मांड को इस रस का आस्वादन कराने के लिए। जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो अकेले नहीं आते, अपने पार्षदों के साथ में आते हैं। तो कविराज गोस्वामी यहां कहते हैं कि ये परम सत्य भगवान अपने पार्षदों से, अपने विस्तारों से भिन्न नहीं है। वही एक परम सत्य, वही एक परम तत्व अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट कराते हैं। इसलिए इन्हें पंच तत्व कहते हैं। ये पांच तत्व हैं तो एक, परंतु वही एक तत्व अपने आप को प्रकट कराते हैं पांच तत्वों में। ये कौन से हैं पांच तत्व, इनका वर्णन यहां कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। पंच तत्वात्मकम कृष्णम, वही कृष्ण पांच तत्वों में प्रकट हो रहे हैं। तो आइए देखिए कौन से हैं। पहले हैं भक्त रूप। तो श्री कृष्ण जब भक्त के रूप में आते हैं तो उनका नाम क्या है, श्री गौरांग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो यहां इस श्लोक में भक्त रूप शब्द गौरांग महाप्रभु को संबोधित करता है। स्वरूपकम, भक्त स्वरूपकम, स्वरूप कौन है भक्त के, वो है नित्यानंद प्रभु जो कि स्वयं बलराम है। आगे भक्तावतारम, भक्त के अवतार कौन है, स्वयं महाविष्णु अब अद्वैत आचार्य के रूप में गौर लीला में प्रकट हुए हैं। साथ साथ भक्ताख्यम, जो भक्त कहलाते हैं, नारद मुनि श्रीवास ठाकुर के रूप में गौर लीला में प्रकट हुए हैं। और साथ साथ भक्त शक्तिकम, भक्त शक्ति वो हैं गदाधर पंडित, अंतरंगा शक्ति भगवान श्री कृष्ण की, जो कि गौर लीला में गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुई हैं। वैसे गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के अवतार माने जाते हैं। कवि कर्णपुर अपने गौड़ गण उद्देश्य दीपिका में कहते हैं, श्री राधा प्रेम रूप या पुरा वृंदावनेश्वरी सा श्री गदाधरो गौरवल्लभ पंडिताख्यक। इसका मतलब है श्री राधा प्रेम रूप या पुरा वृंदावनेश्वरी, पुरा मतलब जो पहले व्रज में वृंदावनेश्वरी थी अर्थात श्री राधा थी, वही सा श्री गदाधरो, वही श्री राधा अब गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुई हैं। गौर वल्लभ पंडित आख्याक, गदाधर पंडित वही श्रीमती राधा रानी है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने भी श्रीमती राधा रानी का भाव स्वीकार किया है, फिर भी वो हैं श्री कृष्ण। राधा कांत, राधा की कांति को स्वीकार किया है, राधा द्युति या कांति को स्वीकार किया है, परंतु हैं श्री कृष्ण स्वरूपकम, श्री कृष्ण ही है वो। तो श्रीमती राधा रानी आई हैं गौर गदाधर गौर लीला में गदाधर पंडित के रूप में। इसलिए राधा कृष्ण जो व्रज में हैं वो नवद्वीप में गौर गदाधर हैं। और इतना ही नहीं, कवि कर्णपुर कहते हैं, राधाम अनुगता यत्तल ललितापि अनुराधिका अतः प्राविशत ईशातम गौर चंद्रोदय यत, कि राधा रानी की एक सहेली है, उनकी अनुगमन करने वाली एक सहेली है, अनुगता राधा अनुगता यत्तल ललिता अपि अनुराधिका, तो वो है ललिता देवी। तो ललिता देवी का और एक नाम है अनुराधा, क्योंकि वो राधा रानी के पीछे पीछे चलती हैं, राधा रानी की सेवा करती हैं, सखियों में से प्रमुख हैं। अतः प्राविशद एषतम गौर चंद्रोदय यत। तो ऐसे ये ललिता देवी भी गदाधर पंडित के देह में प्रविष्ट हुई हैं, ऐसे चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कहा गया है या दिखाया गया है। तो ये कवि कर्णपुर कहते हैं। दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं अपने चैतन्य चरितामृत के तात्पर्यों में कि गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी और ललिता सखी के सम्मिलित अवतार हैं, जॉइंट इनकार्नेशन। तो ये गदाधर पंडित कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण भक्त नहीं है, वो साक्षात श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं और साथ साथ में ललिता देवी भी प्रविष्ट हुई हैं। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि ये पांच तत्व एक तत्व हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से कोई भेद नहीं है, परंतु अनेक स्वाद का आनंद लेने के लिए वह एक परम सत्य अपने आप को इस प्रकार से भेद कर देते हैं। तो ऐसे भेद करने का उद्देश्य है रस का आस्वादन, और भेद करने के बाद इनकी श्रेणियां अलग हो जाती हैं। हालांकि एक तत्व है फिर भी श्रेणियां अलग। इनमें से जो पहले तीन श्रेणियां हैं, भक्त रूप, भक्त स्वरूप और भक्तावतार, अर्थात गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, ये शक्तिमान तत्व कहलाते हैं, विष्णु तत्व। इन विष्णु तत्वों में भी ये तीनों प्रभु हैं, फिर भी इनमें से एक गौरांग महाप्रभु महाप्रभु हैं, दूसरे दो प्रभु हैं और ये महाप्रभु हैं, लेकिन ये तीनों प्रभु मिलकर विष्णु तत्व या शक्तिमान तत्व कहलाते हैं। और जो भगवान के भक्त हैं श्रीवास पंडित या भगवान की शक्ति हैं, वो दोनों जीव तत्व और शक्ति तत्व कहलाते हैं। जीव वैसे भी भगवान की शक्ति ही है, परंतु श्रीमती राधा रानी शक्ति तत्वों की उद्गम है। उसी प्रकार से गदाधर पंडित भी भगवान की शक्ति तत्वों के उद्गम है। जितने भी भगवान की शक्ति तत्व हैं वो सब श्रीमती राधा रानी या गदाधर पंडित से आते हैं। तो दोनों हैं भगवान की आराधना करने वाले आराधक। इसलिए यहां पर कविराज गोस्वामी आगे कहते हैं, ये है आदिलीला का सातवां अध्याय। तीन तत्व सर्वाराध्यक मानी, चतुर्थ जो भक्त तत्व आराधक जानी। तीन तत्व, कौन से तीन तत्व? पहले तीन मतलब भक्त रूप, भक्त स्वरूप और भक्तावतार। ये कौन है? सर्व आराध्य कोरिमानी, ये सर्व आराध्य हैं। सारे ब्रह्मांड के लिए, सारे सृष्टि के लिए ये आराध्य हैं। चतुर्थ जो भक्त तत्व आराधक मानी, तो अन्य जो हैं, जो बाकी जो तत्व हैं, वो आराधक हैं, आराध्य नहीं है। आराध्य हम सब के लिए हैं, परंतु भगवान के लिए ये आराधक हैं, ये भगवान की आराधना करते हैं। आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं, गदाधर पंडितादि प्रभु शक्ति अवतार, अंतरंग भक्त कोरी गणन जहार। गदाधर पंडित इत्यादि भक्तों को भगवान की शक्ति अवतार मानना चाहिए। वे भगवान की सेवा में लगे हुए अंतरंग भक्त हैं। जस बलना प्रभु नित्य विहार, जस बलना प्रभु कीर्तन प्रचार, जस बलना करें प्रेम आस्वादन, जहां सब लाना दाना कौरे प्रेम धान। केवल अंतरंगा भक्त या शक्ति समूह भगवान की लीलाओं में नित्य संगी होते हैं। भगवान केवल इन्हीं के साथ संकीर्तन आंदोलन के प्रतिपादन हेतु अवतरित होते हैं, उन्हीं के साथ माधुर्य रस का आस्वाद करते हैं और केवल इन्हीं के साथ जन सामान्य को इस ईश प्रेम का वितरण करते हैं। सेवी पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया पूर्व प्रेम भंडारेर मुद्राज उघाड़िया। कृष्ण के गुणों को दिव्य प्रेम का आगार माना जाता है। जब कृष्ण विद्यमान थे तो यह प्रेम का आगार उन्हीं के साथ आया था, किंतु पूरी तरह से सील बंद या मुद्रित था। किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अन्य पंच तत्व संगियों के साथ आए तो उन्होंने कृष्ण के दिव्य प्रेम सागर को लूट लिया। वे ज्यों ज्यों उसका आस्वादन करते गए त्यों त्यों उनकी प्यास बढ़ती ही गई। दूसरे शब्दों में ये पंच तत्व भगवान के साथ में इसलिए आते हैं कि भगवान का साथ देते हैं इस प्रेम रस का स्वाद लेने के लिए और इस प्रेम रस को बांटने के लिए। देखिए, आनंद का स्वाद तब बढ़ता है जब हमारे साथ आनंद का स्वाद लेने के लिए कोई और हो। तब अगर हम अकेले में बैठना चाहें आनंद लेने के लिए तो उतना आनंद नहीं आता। इसलिए तो गीता में भी अर्जुन कहते हैं कि मैं सारे मेरे रिश्तेदारों को, मेरे भाईजनों को, मेरे गुरुजनों की हत्या अगर मैं कर लूं और मुझे ये सारा ऐश्वर्य, ये सारी समृद्धि प्राप्त हो भी जाए तो क्या लाभ, किन के संग में इस राज्य का मैं ये भोग करूंगा। इसलिए तो एको बहुश्याम, भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है, आत्मा राम है, अपने आप में संतुष्ट हैं, फिर भी वो अपने आप को विस्तृत करते हैं। क्यों? क्योंकि इस आनंद को बढ़ाना चाहते हैं। इस आनंद के वृद्धि के लिए भगवान अपने पार्षदों के साथ, अपने भक्तों के साथ इस प्रेम रस के आनंद का आदान प्रदान करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान अकेले में आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए जब यहां श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए तो अपने सारे पार्षदों को लेकर आए। वैसे गदाधर पंडित के बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य रस का स्वाद लेना चाहते हैं वो गदाधर पंडित के शरण में जाते हैं, और जो अन्य रसों में भगवान की सेवा करना चाहते हैं वो या तो अद्वैताचार्य या नित्यानंद प्रभु के शरण को ग्रहण करते हैं। हम देखते हैं कि द्वादश गोपाल जो हैं वो नित्यानंद प्रभु के सखा हैं, उनके शरण में जाते हैं, उनके भक्त होते हैं। तो ऐसा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तात्पर्य में कहते हैं, जो कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। श्री गदाधर पंडित का आविर्भाव आज हुआ था। वैसे महाप्रभु के आविर्भाव के आसपास ही हुआ था, समय की बात है। और बेलेती नाम के गांव में, जो कि चिटागोंग जिले में पड़ता है, जो अब बांग्लादेश में है, उनके पिता का नाम था माधव मिश्र और उनकी माता का नाम रत्नावती देवी। उनके एक भाई थे जिनका नाम था बानीनाथ। जब गदाधर पंडित 12 वर्ष के थे तो सारा परिवार जो है बेलेती ग्राम से नवद्वीप चले आया, और तब से गदाधर पंडित की मित्रता निमाय पंडित से हुई। गदाधर पंडित नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, ऐसा कोई वर्णन नहीं आता है कहीं भी। और आगे चल के उन्होंने क्षेत्र संन्यास स्वीकार किया, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे चल के। नवद्वीप में जब वो रहा करते थे, वो भी बड़े पंडित थे, निमाय पंडित के साथ में ही पढ़ते थे, सहपाठी थे, जब ईश्वरपुरी नवद्वीप में आए थे तो अपने कृष्ण लीलामृत को सुनाया उन्होंने गदाधर पंडित को, और इन गूढ़ तत्वों का उपदेश गदाधर पंडित ने दिया, क्योंकि ईश्वर पंडित को बड़ा स्नेह था गदाधर पंडित के ऊपर। गदाधर के दिव्य गुणों को देखा, उनकी नम्रता, उनके भक्ति के गुण, इनको देखकर ईश्वरपुरी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने गदाधर पंडित के ऊपर बड़ी कृपा की, और स्वयं जिस ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी कृष्ण लीलामृत, इसको पढ़ के पूरा समझाया गदाधर पंडित को। उस समय निमाय पंडित का जो स्वरूप था वो एक व्याकरण के पंडित का था। बहुत बड़े विद्वान थे निमाय पंडित, इतने बड़े विद्वान कि कोई उनका सामना नहीं कर सकता था, और जानबूझकर इस पांडित्य का आनंद लेने के लिए वो सब जगह जाके जितने भी शहर के पंडित थे उनको चुनौती देते, और जब भी कोई सामने आता तो उनको रोक देते और उनसे कहते कि आप कुछ कहिए शास्त्रों से, तो वो बेचारे पंडित कुछ कह देते तो तुरंत ही निमाय उस बात का, उस सिद्धांत का खंडन कर देते, और वो बेचारे पंडित जो है निरुत्तर रह जाते। फिर निमाय पंडित कहते उत्तर नहीं दे पा रहे हो तो ठीक है, मैंने जो आपके वचन का खंडन किया अब इस बात का मैं खंडन पुनः करूंगा। तो जिस सिद्धांत की स्थापना निमाय पंडित ने की थी उसी सिद्धांत का खंडन उन्होंने अपने आप कर लिया, और जो उस व्यक्ति ने पहले सिद्धांत कहा था उसको पुनः स्थापित कर दिया, और इस प्रकार से बार बार खंडन करना, स्थापित करना, खंडन करना, स्थापित करना, ऐसे कर करके सारे पंडितों को उन्होंने परास्त कर दिया था। कोई ऐसा पंडित नहीं था जो निमाय पंडित का सामना कर सकता था, और विशेष करके अपने मित्रों को तो बहुत ऐसे हैरान करते थे, सभी लोग निमाय पंडित के सामने आने के लिए डर जाते थे। एक बार उन्होंने गदाधर पंडित को पकड़ लिया, अरे गदाधर कहां जा रहे हो, ये तो बताओ कि मुक्ति क्या चीज है, तुम तो पंडित हो ना। गदाधर पंडित, देखो तुम्हारा नाम पंडित है तो देखते हैं तुम्हारा पांडित्य कितना गहरा है, तो बोलो मुक्ति क्या चीज है। तो गदाधर पंडित ने शास्त्रों के आधार पर कहा कि मुक्ति की परिभाषा है आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही, कि जिससे दुख का निवारण पूर्णतया होता है वह मुक्ति है। जब कोई व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त करता है कि दुखों का निवारण पूरी तरह से हो जाता है तो उसे मुक्त अवस्था समझना चाहिए। तो निमाय पंडित ने इस बात का खंडन किया और सच्ची मुक्ति क्या है इस सिद्धांत की स्थापना की, और जिस प्रकार से निमाय पंडित बोले जा रहे थे तो सारे वहां जो उनके मित्र थे वो केवल आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, और जितने भी वैष्णव भी वहां थे वो सब सोच रहे थे कि काश ये निमाय पंडित जो इतना बुद्धिमान है अगर ये वैष्णव होता तो कितना अच्छा होता, इस बुद्धि का प्रयोग अगर अवैष्णवों के खिलाफ किया जाता तो कितना अच्छा होता। कभी कभी भक्तों को भी झगड़ने की प्रवृत्ति होती है तो आपस में झगड़ने के बजाय कहीं और झगड़ना चाहिए, जो भक्तों के शत्रु होते हैं उनके साथ झगड़ लेना चाहिए। यहाँ एक भक्त थे प्रभुपाद के समय, झगड़ा किया करते थे अन्यों के साथ, तो प्रभुपाद जी उनको हरिद्वार भेज दिए कि जाओ वहां मायावादियों के साथ युद्ध करो, उनके मायावाद सिद्धांत का खंडन करो और भक्ति के सिद्धांत की स्थापना करो। तो सारे भक्त लोग सोचते थे कि काश अगर ये निमाय पंडित जो इतना बुद्धिमान है भक्त होता तो कितनी अच्छी बात हो जाती, सारे वैष्णव धर्म का प्रचार वो तो विश्व भर में कर लेता। यहाँ पर इतने सारे मायावादी हैं, भोगवादी हैं, नास्तिकवादी हैं, तरह तरह के वाद लोग स्वीकार कर रहे हैं, और भक्ति, कृष्ण भक्ति कहीं नहीं पाई जा रही है, कितना दुर्भाग्य की बात है। तो निमाय पंडित को किसी न किसी तरह से भक्त बन जाना चाहिए। तो ऐसे ये प्रार्थना करते हैं। और जब ये भक्त उनसे भाग जाते, क्योंकि निमाय पंडित उनको भी पकड़ लेते कि आओ मेरे साथ तर्क करो, और जब वो भाग जाते तो निमाय पंडित उनसे कहते, अरे क्यों भाग रहे हो, मैं वैष्णव नहीं हूं इसलिए भाग रहे हो क्या? अभी देखो, मैं तुम्हें बताता हूं, एक ऐसा दिन आएगा जब मैं ऐसा भक्त बनूंगा जब तुम मेरे संग को छोड़ नहीं पाओगे। वो तो स्वयं भगवान है, वो तो सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य तीनों को ही जानते हैं, और वो इस लीला को करने के लिए ही तो आए हैं यहां पर। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने भक्तों की वाणी, अपने भक्तों की भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिखाया। आगे चल के ऐसे भक्त हुए भी यहां पर। और जब यहां चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में परिवर्तन कर दिखाया अपने चरित्र का, और भक्त बने, और गया से ईश्वरपुरी से दीक्षा स्वीकार करके नवद्वीप लौट के आए, तो बिल्कुल प्रेमावेश में आए, उन्मत्त थे कृष्ण प्रेम में। कृष्ण नाम का उच्चारण और संकीर्तन करते करते, झूमते झूमते, नृत्य करते हुए जब वो नवद्वीप लौट के आए, तो सबसे पहले तो श्रीमान पंडित ने उनको देखा। श्रीमान पंडित को आश्चर्य हो गया। सारे वैष्णवों को जाके श्रीमान पंडित ने कहा कि अरे देखो, ये क्या आश्चर्य है, हमारे निमाय पंडित जो केवल व्याकरण और ज्ञान में रमण करता था, आज भक्त बन गया है और बहुत ही भाव विभोर होकर झूम झूम के नृत्य और कीर्तन कर रहा है, आओ देखो तो सही। तो सारे वैष्णवों को बुलाकर श्रीमान पंडित उस स्थान पर चले गए, शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर में, और वहां पर गदाधर पंडित भी आए थे। लेकिन गदाधर पंडित ने अपने आप को थोड़ा सा दूर रखा, वो देखना चाहते थे कि यह सत्य है कि नहीं, ये वास्तव में निमाय भक्त बना है कि नहीं बना है। क्योंकि गदाधर पंडित सोचते थे, ये निमाय पंडित ये कैसे भक्त बनेगा। लेकिन दूर से जब गदाधर ने देखा निमाय पंडित को, और निमाय पंडित के अष्ट सात्विक विकार देखे, और जिस प्रकार से निमाय उन्मत्त होकर गिर पड़ते थे, कभी ऊपर नृत्य करते थे, छलांग मारते थे, और भाव भोर होकर कृष्ण का नाम का उच्चारण करते, तो उस समय गदाधर पंडित भी भाव भोर होकर नीचे गिर पड़े, वो प्राय बेहोश हो गए वहां पर। इस प्रकार से जब महाप्रभु ने देखा, निमाय पंडित ने गदाधर को इस अवस्था में देखा, तो गदाधर को उठाया और गदाधर को आलिंगन करते हुए कहा कि गदाधर, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम कृष्ण के बहुत शुद्ध भक्त हो, और बचपन से ही तुम शुद्ध भक्त थे। लेकिन देखो, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे अंदर कोई कृष्ण भक्ति नहीं थी, अब भी नहीं है, लेकिन अब मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इतने साल मैंने गंवा दिए। देखो, मैं सारे व्याकरण ज्ञान आदि के पीछे भागता रहा और कृष्ण भक्ति मैंने नहीं की, तो मेरा सारा जीवन व्यर्थ है। लेकिन तुम तो आदर्श व्यक्ति हो, तुम बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहे। तो गदाधर पंडित निमाय पंडित के हमेशा साथ में रहा करते थे। इसके बाद, इस घटना के बाद, जब भी निमाय पंडित कहीं भी जाते, गदाधर को साथ लेकर जाते। एक बार ऐसे हुआ जब श्री कृष्ण के विरह में निमाय पंडित बहुत विचलित हो गए थे, विफल हो गए थे, तो वो हां कृष्ण कह के इधर उधर जा रहे थे, बड़े विचलित अवस्था में। कहां है कृष्ण, कहां मिलेंगे मुझे कृष्ण, तो कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कैसे निमाय पंडित को इस अवस्था में शांत करना, किस प्रकार से उनको सांत्वना देना, ये कोई नहीं समझ पाता था। सची माता ने जब निमाय पंडित को इस अवस्था में देखा, वो तो बहुत ही डर गई, बहुत ही चिंतित हो गई कि मेरे प्रिय निमाय को कैसे शांत किया जाए, वो इस प्रकार से आ रहा है, जा रहा है, छलांग मार रहा है, कहीं कुछ चोट न पहुंच जाए निमाय पंडित को। तो उस समय गदाधर पंडित वहां पर आए। गदाधर को निमाय ने पूछा, अरे गदाधर, कहां है कृष्ण। तो निमाय गदाधर ने उत्तर दिया, अरे चिंता नहीं करो, कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में है, क्यों चिंता कर रहे हो? कृष्ण कहां भाग गए हैं? तुम्हारे हृदय में ही है। जैसे ही निमाय ने सुना कि कृष्ण मेरे हृदय में है, तो हनुमान की तरह अपने वक्षस्थल को फाड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो प्रसंग आपको पता है ना कि हनुमान जी अपने वक्षस्थल को फाड़ के दिखाना चाहते थे कि यहां मेरे हृदय में श्री राम है। तो निमाय पंडित ने भी देखा कि कृष्ण यहां हृदय में है तो मुझे प्राप्त करना चाहिए, तो अपने नाखूनों से अपने वक्षस्थल को फाड़ने लगे। और उस समय गदाधर पंडित ने उनके कर कमलों को पकड़ लिया और कहा, नहीं नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा धीरज रखो, कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, कृष्ण अवश्य तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से निमाय पंडित को किसी न किसी तरह से बड़े मुश्किल से गदाधर पंडित ने शांत कर लिया। तो सची माता ने ये देखा और सची माता बड़ी प्रसन्न हुई गदाधर के ऊपर। अरे गदाधर, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम ही हो जो कि मेरे निमाय को शांत कर सकते हो, इसलिए हमेशा तुम मेरे निमाय के साथ में रहना, कभी उसका संग छोड़ना नहीं। इस प्रकार से गदाधर पंडित को सची माता की कृपा प्राप्त हुई। एक बार नवद्वीप लीला में ही जब महाप्रभु अपने ही भक्ति भाव में थे, अचानक ही अकस्मात बिना कोई वजह वो जोर जोर से कहने लगे, हे मेरे पिता पुंडरीक, हे मेरे पिता पुंडरीक। तो भक्तों को समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं, कौन है ये पुंडरीक, भक्त समाज में तो ऐसे कोई पुंडरीक थे नहीं, तो किन की बात कर रहे हैं महाप्रभु। तो फिर उनको ये अनुमान हुआ कि हाँ ऐसे कोई वैष्णव होंगे अवश्य पुंडरीक, ये जो यहां आने वाले हैं। वो थे पुंडरीक विद्यानिधि, जो पहले चिट्टगांव में रहा करते थे। तो वहां से आए पुंडरीक, वैसे वृषभानु महाराज हैं कृष्ण लीला में, ऐसे गौड़ गणोदेश दीपिका में कवि कर्णपुर कहते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि भगवान के पार्षद हैं, शुद्ध भक्त हैं, परंतु जब वो नवद्वीप में आए तो वो दिखाना नहीं चाहते थे दूसरों को कि मैं भक्त हूं। कभी कभी जो महान वैष्णव होते हैं वो ऐसे अपने वैष्णवता को, अपने कृष्ण प्रेम को ढक देना चाहते हैं। जैसे माधवेंद्रपुरी थे, जब गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर चोरी कर दी और पुजारी भागते हुए उनकी खोज में आया और माधवेंद्रपुरी को उन्होंने खीर दिया, वो पुजारी ने जाके सब जगह बात फैला दी कि गोपीनाथ जी ने माधवेंद्रपुरी नाम के सन्यासी के लिए खीर चोरी की है, ये कितने महान भक्त हैं। तो ये बात सब जगह फैल गई तो माधवेंद्रपुरी को पुरी को बड़ा डर हो गया कि अरे अब मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, अब लोग जान जाएंगे कि मैं कौन हूं। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो प्रसिद्धि नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि लोग हमारे पीछे आए। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इन तीन चीजों को शुद्ध भक्त बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये संसार में तो सबके लिए ये ऐसे वस्तुएं हैं जो सब पागल की तरह इनके पीछे भागते हैं, परंतु माधवेंद्रपुरी को कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए तुरंत वहां से वो निकल पड़े। उसी प्रकार से गौर किशोर दास बाबा जी, जब वो अपना भजन साधन किया करते थे तो एक ऐसे गंदे स्थान में गए भजन करने के लिए जहां लोग शौच करने के लिए आते थे। वो जानते थे कि यहां इतना दुर्गंध है कि कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा, अगर मैं दूसरी जगह बैठूंगा तो तरह तरह के लोग आएंगे, वो आशीर्वाद चाहेंगे, लेकिन मैं यहां रहूंगा तो कोई मेरे पास नहीं आएगा। और फिर भी जब लोग आने लगे तो उन्होंने क्या किया, एक तरकीब सोची कि कैसे इन लोगों को मेरे से दूर रखा जाए। इसके लिए एक ही तरीका है, मेरा नाम इतना खराब हो जाना चाहिए भक्त लोगों के समाज में कि कोई मेरे पास नहीं आए। तो बड़े अच्छे अच्छे रेशम के कपड़े आदि पहनकर इधर उधर घूमने लगे तो सभी लोग देखने के, अरे देखो ये तो बाबा जी थे, पहले तो ऐसे अवस्था में रहा करते थे, अभी देखो अभी उनका असली रूप पता चल गया, देखो ऐसे रेशम के कपड़े पहन रहे हैं, बड़े ठाट से घूम रहे हैं, अरे ये क्या, इनका असली स्वरूप अब पता चला, चलो अब इनके पीछे नहीं जाएंगे, ये भी वैसे दूसरों की तरह ये भी ढोंगी हैं, चलो। तो इन बातों को सुनकर गौर किशोरदास बाबा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, बस बहुत अच्छा, अब मेरी बदनामी हो गई, अब मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, अब प्रसिद्धि नहीं होगी, कुछ नहीं। तो इस प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो अपने महानता को कभी कभी ढक देना चाहते हैं। तो पुंडरीक भी ऐसे ही थे, पुंडरीक विद्यानिधि, उन्होंने एक बहुत ही अमीर व्यक्ति का रूप स्वीकार किया, वैसे थे भी बहुत धनी, और जब आए तो एक विषयी व्यक्ति की तरह उनका बर्ताव, उनका रहन सहन था। हालांकि अंदर से वो तो शुद्ध भक्त थे, उनके अंतःकरण में वो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण सदैव किया करते थे। तो साधारण लोगों ने नवद्वीप में सोचा कि ये कोई धनी व्यक्ति है, केवल इंद्रिय विषय में पड़ा हुआ है, भोग में भोग कर रहा है। परंतु मुकुंद दत्त जो कि चिटगांव के थे, वो पुंडरीक विद्यानिधि को अच्छी तरह से जानते थे। तो एक दिन मुकुंद दत्त ने गदाधर पंडित से कहा कि अरे आओ, मैं तुम्हें एक बहुत महान वैष्णव से मिला देता हूं। तो गदाधर पंडित ने सोचा बहुत अच्छी बात है, एक शुद्ध वैष्णव से हम मिलेंगे, बहुत अच्छा, चलो। तो मुकुंद दत्त गदाधर को लेकर गए पुंडरीक के पास। जब पुंडरीक विद्यानिधि के घर में पहुंचे तो क्या देखा कि बड़ा शान है, ये शानदार वातावरण है यहाँ पे, बड़ा ऐसे लग रहा है कि ये तो ऐश कर रहे हैं, रेशम के कपड़े और अच्छे अच्छे तकिए वहां पर, गादी वगैरह सब उसके ऊपर रेशम के, बीच अब चादर पड़े हुए हैं, साथ साथ पान भी चबा रहे हैं, और तरह तरह नौकर चाकर उनकी सेवा कर रहे हैं, कोई चामर हिला रहा है, कोई दूसरी कोई सेवा कर रहा है, और आभूषण हीरे रत्न वगैरह सब पहने हुए हैं, और उनके बैठने के ढंग से वगैरह ऐसे लग रहा था कि ये तो कोई विषयी आदमी है। तो जैसे ही गदाधर पंडित ने पुंडरीक को देखा तो मन में संशय उत्पन्न हो गया, और उनके चेहरे से मुकुंद दत्त को पता चला कि गदाधर के मन में संशय हुआ है पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में। तो तुरंत ही मुकुंद दत्त ने श्रीमद् भागवत के उस प्रसिद्ध श्लोक का उच्चारण किया, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसि व्यापाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ये उद्धव कहते हैं और विदुर, दोनों के बीच में जब संवाद होता है श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में, तो जब विदुर उद्धव जी से कृष्ण के बारे में कहते हैं तो उद्धव उत्तर देते हैं कि ऐसे श्री कृष्ण से बड़ा कृपालु कौन व्यक्ति हो सकता है, उन्होंने पूतना नाम के राक्षसी का भी को भी के ऊपर कृपा कर दी, जबकि पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी, और स्तनों के ऊपर एक विष डालकर आई थी ताकि श्री कृष्ण इसका पान कर ले और मर जाए। फिर भी श्री कृष्ण ने ऐसी कृपा की कि पूतना को उन्होंने एक धात्री का स्थान गोलोक वृंदावन में दे दिया। तो ये है श्री कृष्ण की कृपा, तो इनसे बड़ा कृपालु कौन हो सकता है। तो ये श्लोक जब मुकुंद दत्त ने कहा और इसको पुंडरीक विद्यानिधि ने सुना तो उनका सारा व्यवहार जो है वो बिल्कुल बदल गया। कहां वो लाट साहब बैठे हैं, ऐश कर रहे हैं, पान चबा रहे हैं और नौकर चाकर उनकी सेवा कर रहे हैं, अचानक वहां से गिर पड़े और हाथ पैर फैलाने लगे और सारे जितने भी अष्ट सात्विक विकार है उनके शरीर में प्रकट होने लगे, और हा कृष्ण कह के वो ऐसे भाव, तीव्र भाव को स्वीकार कर रहे थे कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। अनेक लोगों की आवश्यकता हुई उनको स्थिर करने के लिए, नहीं तो कोई उनको नियंत्रण में नहीं ला पा रहा था। और जितने भी वहां कुर्सी थे, मेज थे, सब तोड़ दिए, जितने भी पर्दे थे सब फाड़ दिए, अपने कपड़े भी फाड़ दिए उस भाव के तीव्रता में। ऐसा भाव तो गदाधर ने कभी देखा नहीं था कि अरे ये भी ये पुंडरीक विद्यानिधि ऐसे भक्त हैं। हमें इस समय जान लेना चाहिए कि ऐसे भाव का नकल नहीं किया जा सकता, नहीं किसी को करने का प्रयास करना चाहिए। तो उस समय गदाधर पंडित को पता चले कि अरे मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, और उन्हें पता चला कि पुंडरिक विद्यानिधि कितने बड़े भक्त हैं। बाद में चल के महाप्रभु के सलाह पर इस अपराध का शमन करने के लिए गदाधर पंडित ने पुंडरिक विद्यानिधि से दीक्षा स्वीकार कर ली। महाप्रभु ने ही आदेश दिया पुंडरिक को, गदाधर पंडित को, कि जाओ दीक्षा ग्रहण कर लो। तो इस प्रकार से पुंडरिक विद्यानिधि गदाधर पंडित के दीक्षा गुरु बने। गदाधर पंडित ने व्रत लिया था क्षेत्र संन्यास का। क्षेत्र संन्यास का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति व्रत लेता है कि इस स्थान को, इस तीर्थ को छोड़कर मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। तो गदाधर पंडित का व्रत था कि मैं पुरी, जगन्नाथपुरी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। वहां पर पुरी में समुद्र के तट पे यमेश्वर शिवजी हैं, विराजमान हैं। यमेश्वर शिवजी का मंदिर है, उसके पास में एक उद्यान है, एक बगीचा है, टोटा। टोटा मतलब बगीचा। तो महाप्रभु ने गदाधर पंडित को गोपीनाथ का विग्रह दिया और कहा कि गोपीनाथ जी की सेवा करो उस यमेश्वर टोटा में। तो उसके बाद वहां वो मंदिर था टोटा गोपीनाथ। तो वहां पर गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे। और ऐसे कहा जाता है कि जब महाप्रभु का तिरुभाव हुआ तो इस टोटा गोपीनाथ में ही हुआ। भगवान इस गर्भगृह में प्रविष्ट हुए और बाहर नहीं आए, और किसी को दिखाई नहीं पड़ा कि महाप्रभु गए कहां। वैसे तो महाप्रभु के तिरुभाव के लिए भिन्न मत हैं वैष्णवों में, परंतु सबसे स्वीकृत जो मत है वो यही है कि वो टोटा गोपीनाथ में विलीन हो गए। विलीन हो के मतलब है कि वो स्वधाम लौट के चले गए। तो जब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वृंदावन जाना चाहते थे तो उनके भक्तों ने उनको बार बार रोका, और फिर अंततः उनसे कहा कि ठीक है, अब विजयदशमी के बाद में जाना। तो विजयदशमी के बाद जब महाप्रभु निकल पड़े तो उनके साथ में अनेक भक्त आए। जब वो चित्रोत्पल नदी तक पहुंचे फिर सारे भक्त वहां रुक गए, और केवल गिने चुने भक्त जैसे रामानंद राय, हरिचंदन आदि महाप्रभु के साथ में नदी पार करके आगे चले। उनके संग में गदाधर पंडित भी आए, और उस समय महाप्रभु ने गदाधर पंडित से कहा कि देखो, तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है, तुमने व्रत लिया है कि तुम जगन्नाथपुरी छोड़कर कभी बाहर नहीं जाओगे, इसलिए यहीं पर रुक जाना। यह अन्य भक्त मेरे साथ में है जो मेरा देखभाल करेंगे। तो गदाधर पंडित ने उत्तर दिया कि नरक में जाए मेरा क्षेत्र संन्यास का व्रत, जहां आप हैं वही जगन्नाथपुरी है, इसलिए मेरा व्रत मैं नहीं तोड़ रहा हूं। तो महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, आपको जाना चाहिए, ये ठीक नहीं, आपने व्रत लिया है तो देखो सबके लिए तो आपको ये व्रत का पालन करना चाहिए। तो गदाधर पंडित ने उत्तर दिया, आपके चरण कमलों का दर्शन करना गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ की सेवा करने से कोटि कोटि गुना ज्यादा बड़ी अच्छा है, लाभदायक है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा वापस, आपके साथ में ही आऊंगा। तो फिर महाप्रभु ने कहा देखो, अरे तुम्हारी बदनामी तो होगी लेकिन मेरी भी तो होगी ना। लोग कहेंगे देखो महाप्रभु की वजह से इनका क्षेत्र संन्यास का व्रत जो है टूट गया, फिर लोग मेरे बारे में भला बुरा कहेंगे, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। तो गदाधर पंडित ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ में नहीं आऊंगा, मैं पीछे रहूंगा आपके, लेकिन आप चलो मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। तो महाप्रभु कुछ कह नहीं पाए, तो काफी दूर पीछे पीछे गदाधर पंडित चलते रहे। और जब महाप्रभु कटक पहुंचे, जो कि करीब पुरी से 100 किलोमीटर दूरी पर है, तो इस समय महाप्रभु ने कहा कि अब निश्चित रूप से आपको यहीं रहना पड़ेगा, इससे आगे नहीं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई। तुम मेरे लिए तुम्हारे क्षेत्र संन्यास का व्रत तोड़ देना चाहते थे ना, अब तो व्रत टूट गया, अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई, अब वापस जाओ और पुनः तुम्हारे क्षेत्र संन्यास के व्रत में स्थित हो जाओ। तो जब गदाधर पंडित ने महाप्रभु के निश्चय को देखा तो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़े और बिना पीछे देखे हुए महाप्रभु आगे चलते गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य आदि ने देखा महाप्रभु का निश्चय और उनको उनको आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ आश्चर्य भी हुआ। और किसी न किसी तरह से गदाधर पंडित को उन्होंने उठाया और बड़े मुश्किल से वापस टोटा गोपीनाथ भेज दिया। तो गदाधर पंडित फिर महाप्रभु वैसे तो लौट कर आए वृंदावन से, नीलाचल में आए रहे। उधर वल्लभ भट्ट भी आए। वल्लभ भट्ट जो हैं वो बड़े विद्वान थे, परंतु महाप्रभु ने देखा कि इनके हृदय में थोड़ा बहुत गर्व भी है, इसलिए महाप्रभु ने उनसे उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जिससे कि वल्लभ भट्ट को पता चले कि वो प्रसन्न नहीं है उनके ऊपर। हर बात जब भी वल्लभ भट्ट कुछ कहते तो महाप्रभु उसमें कोई गलती दिखाते। तो वल्लभ भट्ट ने सोचा कि गदाधर तो महाप्रभु के बहुत प्रिय हैं, तो मैं गदाधर की के साथ दोस्ती करूंगा, ज्यादा गदाधर के साथ समय बिताऊंगा। तो गदाधर पंडित के साथ में आते और महाप्रभु की प्रशंसा करते। तो गदाधर ने सोचा कि वल्लभ भट्ट भी महाप्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन महाप्रभु को उतना पसंद नहीं आया ये। तो महाप्रभु ने भी गदाधर पंडित से भी उनका व्यवहार जो है थोड़ा ठंडा हो गया। तो गदाधर पंडित को इतना बुरा लगा कि आके रोने लगे महाप्रभु के सामने। और महाप्रभु ने गदाधर से आलिंगन किया और कहने लगे कि गदाधर, तुमसे मैं नाराज कैसे हो सकता हूं? तुम्हारा स्वभाव इतना सौम्य इतना सरल है, मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारी परीक्षा मात्र की है, मैं देखना चाहता था कि तुम गुस्सा हो जाओगे या नहीं, लेकिन इतना होने के बाद भी तुम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हुए, इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम से बहुत प्रसन्न हूं। इस प्रकार से गदाधर पंडित महाप्रभु के इतने प्रिय थे, हमेशा उनके साथ में रहा करते थे। जब महाप्रभु का तिरुभाव हुआ तो गदाधर पंडित इस विरह को सहन नहीं कर पाए, और हालांकि उनकी उम्र उतनी नहीं थी, महाप्रभु जितनी ही उम्र थी उनकी 48 की, लेकिन वो ऐसे बूढ़े हो गए उस उम्र में ही, 48 की उम्र में ही वो बूढ़े हो गए, क्योंकि विरह के दुख को सहन नहीं कर पाए। और ऐसे उम्र में अपने टोटा गोपीनाथ जी की सेवा नहीं कर पाए। गोपीनाथ जी खड़े हैं, खड़े थे वैसे साधारणतः जब मंदिरों में हम भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं तो भगवान खड़े ही होते हैं। यहां श्याम सुंदर भी खड़े हैं, कृष्ण बलराम भी दोनों खड़े हैं, तो वहां गोपीनाथ जी भी खड़े थे। लेकिन जो समय से पहले जो वृद्धावस्था आ गई गदाधर पंडित के शरीर में विरह के कारण, तो वो अपने हाथों को उठा नहीं पाए फूल माला पहनाने के लिए गोपीनाथ जी को। तो गोपीनाथ जी ने देखा कि अरे गदाधर मेरी सेवा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो गोपीनाथ जी बैठ गए। और आज भी गोपीनाथ जी टोटा गोपीनाथ मंदिर में बैठे हुए हैं। वे एक ही मूर्ति है भगवान के, भगवान कृष्ण के, जहां हम भगवान को बैठे हुए देखते हैं मुद्रा में। और ऐसे कहा जाता है कि गदाधर पंडित का तिरुभाव भी वही हुआ, लेकिन इनकी दंत समाधि यहां बंसी गोपाल मंदिर में है वृंदावन में ही। तो गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी हैं, भक्ति के सागर हैं, तो उनके आविर्भाव दिवस पर हम उनके चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारे ऊपर कृपा करें और हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ हैं उनका निवारण करें और हमें भी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। श्री गदाधर पंडित की जय। श्री गदाधर पंडित आविर्भाव दिवस महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, हरे कृष्णा।